अच्छा काम करेंगे तो दुनिया को बताएंगे मैंने किया, देखो मैंने इतनी इसकी सेवा की, मैंने इतना इसको दिया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। और कोई गलत काम किया बताना नहीं, बताना नहीं। तो गलत काम किया तो छिपाएंगे और अच्छा काम किया तो बताएंगे, होना चाहिए उल्टा। अच्छा काम किया कोई कहे भी ना, बहन जी आपने इतना अच्छा किया, हम कहते हमने क्या किया, ये तो बाबा की शक्ति थी, हमने तो कुछ नहीं किया। ये बड़ी नम्रता जतानी होती, अभिमान नहीं, मैंने किया मैंने किया मैंने किया। और अगर गलत काम किया तुरंत बता देना चाहिए। तो ये कर्म की गति को समझना होता है ऐसे, क्योंकि गलत काम किया बताया नहीं छिपाया, उसकी तुरंत सजा मिलती है, मन खाता है, क्योंकि अंतरात्मा तो स्वच्छ है ना, पवित्र है। अब हमने सफेद वस्त्र धारण किए, सफेद वस्त्र पर जरा सा दाग भी लग जाता है तो कितना बुरा लगता है। काले कपड़े पहनो तो कितने भी दाग लगे पता भी न चले। तो मन क्यों खाता है कोई गलत काम किया तो? क्योंकि आत्मा बड़ी स्वच्छ है, बुद्धि मन को कहती है ये गलत है ये गलत है। अब कर तो दिया इंद्रियों के वशीभूत होकर के, पर डरते हैं बताएंगे तो पता नहीं क्या सजा मिलेगी। अब बताया नहीं मन खाता रहेगा, नींद हराम हो जाएगी, तुरंत उसका फल तो मिलेगा, नींद उड़ गई, चिंता लग गई, परिणाम की चिंता क्या होगा क्या होगा। पर अभिमान वश बताना भी नहीं चाहते हैं, सजा तो मिलेगी तुरंत मिली, फिर बाकी सजा तो बाद में अलग बात है। तो शिव परमात्मा हम बच्चों को सत्कर्म करना सिखाते हैं, और इसके लिए शिव बाबा क्या कहते हैं, बहुत सहज है सत्कर्म करना। जब हम ये समझते हैं मेरा कुछ है ही नहीं, ये तन भी शिव बाबा का, मन भी शिव बाबा का, धन भी शिव बाबा का, मेरा कुछ नहीं है, तो फिर सत्कर्म करने में संकोच किस बात का। ईश्वर का है तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। वो महात्मा ये गुरु नानक के लिए बताते हैं ना कि गुरु नानक वो कैसे गुरु कैसे बन गया, कैसे उसको बोध हुआ। तो वो वजन कर रहा था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, जैसे 13 पर आया तो क्या किया, 13, 13, 13, 13 हो गया मैं 13, यानी भगवान का मैं हो गया। तो ये भी आत्मा के अंदर में ऐसी धारणा बन जाए तो देखो कितने सत्कर्म हमारे बनेंगे। और तीसरे प्रकार के कर्म हैं, अभी इन सत्कर्मों का फल क्या है वो भी आपको बताएंगे। तीसरे प्रकार के कर्म हैं पुण्य कर्म। कई कहते हैं ना पाप क्या है पुण्य क्या है, कैसे समझ में आए। अब दिखाई तो पुण्य कर्म दे रहा है लेकिन वो पाप का खाता बन सकता है। कैसे पुण्य का खाता बन रहा है, हम किसी भिखारी को दे रहे हैं, चलो मेरे सामने आया चलो हमको पैसा दो, हम कहेंगे नहीं मैं तुमको रोटी देता हूँ, कहेगा रोटी नहीं चाहिए पैसा चाहिए। अब पैसा क्यों चाहिए, रोटी क्यों, अगर भिखारी भीख क्यों मांग रहा है, रोटी के लिए ना, तो हम उनको रोटी देंगे ना, रोटी नहीं लेना है पैसा चाहिए। और क्या करेंगे वो पैसा, शराब पियेंगे सिगरेट पियेंगे, हाँ बहुत कुछ नुकसान करेंगे। तो वो धन जो मैंने दिया वो किस खाते में गया, किस कर्म में हुआ, वो तो हमें उस समय पता नहीं चलता। लेकिन अगर वो पात्र योग्य नहीं है और हमने अयोग्य पात्र को दे दिया तो उसका जो कर्म है उसका दंड हमें भी मिल सकता है, मिल सकता है। ये एक बहुत बड़ी कर्म फिलॉसफी है। इसीलिए दान हमेशा पात्र को देना चाहिए जो उसके लिए जिसको आवश्यक है। अपने नाम मान शान के लिए भी कई दान करते हैं। मुझे याद है एक बार मैं बॉम्बे में रोटरी क्लब में भाषण करने गई थी तो रोटरी क्लब वाले बता रहे थे कि उन्होंने ना बहुत सारे कंबल झुग्गी झोपड़ी वालों को बांटे थे। कंबल सेवा करते हैं अच्छी बात है, तो बहुत झोपड़ियों में कंबल बांट करके आए थे। लेकिन जब 15 दिन के बाद फिर देखने गए उन झोपड़ियों में, कुछ और देना था, तो सभी झोपड़ियों में जहां जहां गए वहां कंबल एक भी नहीं। तो उनसे पूछा गया कि कंबल आपके सब कहाँ चले गए जो इतने सारे बांटे थे, तो बोला वो तो सब बेच दिए, बेच करके दारू पी लेते हैं और क्या करेंगे। और क्या, यानी उनको ज्ञान तो दिया नहीं, समझ तो दी नहीं, और कंबल की क्या जरूरत थी, गर्मी के दिनों में कंबल दे दिया, चलो ठंडी के दिनों में भी दो, ठंडी में भी बम्बई में तो इतनी ठंडी होती ही नहीं है, चलो इस साल तो बहुत पड़ी मान लो, नहीं तो कुछ और दो ना जो सचमुच काम में आए। और नाम इतना कर दिया हमने, इतने कंबल बांटे, इतने ये किए वो किए, तो कहने का भाव है कि पात्र को दान दो, वो पात्र सुपात्र हो। अगर कुपात्र है तो दान निष्फल जा सकता है, और ऐसा अगर कर्म उसका पाप का बना तो उस पाप का खाता आपके पास भी आएगा। कई कहते हैं मैं मीट खाता हूँ, मीट खाता हूँ, हमने कोई जानवर की हत्या थोड़ी की है तो हमारे ऊपर थोड़े पाप चढ़ेगा, लेकिन नहीं, ये भी कर्म की गति है। मीट हम खाते हैं लेकिन हमारे लिए ही तो वो जानवर की हत्या करते हैं, नहीं तो क्यों करे। तो केवल जानवर को मारने वाले पर ही पाप नहीं चढ़ता है, जिसने पकड़ा, जिसने मारा, जिसने काटा, जिसने बेचा, जिसने खरीदा, जिसने पकाया और जिसने खाया, सब पर बराबर पाप चढ़ता है, ये समझ लो। ये कर्म की गति है, इसीलिए कर्म की गति को न समझने के कारण हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि हम कौन से कर्म कर रहे हैं। तो तीसरे प्रकार के कर्म है पुण्य कर्म, जो लगता है पुण्य है पर वो पाप के खाते में भी जा सकता है, और वो पुण्य तब बने जब दो बातें हो। कहा जाता हाँ, दाया हाथ आपका दान करे तो इतना गुप्त दान हो जो बाएं हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए, इसको कहते हैं गुप्त दान महाकल्याण। दान गुप्त होता है, दिखावे का नहीं होता है, बताकर नहीं किया जाता है, पर जितना ही वर्णन किया उसका फल कम होता जाएगा। और वर्णन करते गए करते गए और अपन नेम प्लेट लिखा लिया अपना, तो वो पूरा पुण्य उस नेम प्लेट में आ जाएगा, आगे कुछ नहीं मिलने वाला है। आजकल तो नाम के लिए ही दान करते हैं हम, तो कई जगह देखते हैं एक मंदिर बनाया, राधे कृष्ण की मूर्ति बनाई, मूर्ति राधे कृष्ण की है लेकिन उस मूर्ति के नीचे दान करने वाले का नाम है कि फलाने ने इतना हजार रुपया दे करके ये मूर्ति बनाई। अब मूर्ति तो राधे कृष्ण की है तो मूर्ति के नीचे राधे कृष्ण लिखना चाहिए या उस व्यक्ति का नाम लिखना चाहिए, किसका नाम होना चाहिए, जिसकी मूर्ति है। परंतु नाम उस व्यक्ति का होगा जिसने दान दिया वो मूर्ति बनाने में। और जगह जगह चप्पे चप्पे पर, एक एक ईंट पर, एक एक कुर्सी पर, एक एक टेबल पर किसने दान किया उसका नाम है। कई समझते विदेशों से पैसा आता होगा, विदेश वाले क्यों देंगे, वहां जो अपने ब्रांचेज हैं उनको भी तो अपने सेवाएं करनी है, वो यहाँ क्यों देंगे। परंतु जो आते हैं अपनी इतनी सेवा लेते हैं वो तन से मन से धन से सेवा करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई चंदा हो, कोई डोनेशन हो, कोई फंड हो, उस रूप से हम इकट्ठा नहीं करते हैं, क्योंकि ये परिवार है। परिवार में अगर किसी के चार पांच बच्चे हो तो उसके पिता से आप पूछो कि आपका घर का खर्चा कैसे चलता है, वो कहेगा मेरे बेटे कमाते हैं। बेटे कमाते हैं ना, बेटियां कमाती हैं, सब कमाते हैं घर में, सब कमाते हैं तो घर का खर्चा कैसे चलता है थोड़ी पूछा जाता है। तो ये भी एक परिवार है, यहाँ पर जो आते हैं अपने तन मन धन से सेवा करते हैं। और इसमें ये नहीं है कि किसने 10 रुपया दिया तो उसका नाम नहीं है, 1000 होगा तो नाम होगा, नहीं। अभी 10 दिया क्योंकि 100 कमाया, कमाई 100 है तो 10 देगा, समझो 1000 कमाई है और 100 देगा, 10000 कमाई है 1000 देगा, तो रेशियो तो एक ही बन जाएगा ना, 10/100, 1/10। तो मानो कि जो भी जितनी भी कमाई है उस कमाई अनुसार वो देता है, उसका भाग्य एक जैसा ही बनता है। यानी कि 1 लाख दिया तो ज्यादा भाग्य बना, परंतु उसकी कमाई करोड़ों में होगी तो इसके लिए एक लाख भी कुछ नहीं है। पर किसकी कमाई 100 है और एक दिया तो उसका बहुत बड़ा भाग्य बनेगा। तो कहने का भाव है कि पुण्य कर्म की परिभाषा उस रूप में है कि जिसके प्रति करते हैं वो पहले पात्र हो, दूसरा जब करते हैं तो उसका अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैंने किया। अब ये दोनों बातें अगर है वो पुण्य कर्म बनता है। तो अन्न दान, वस्त्र दान, भू दान, रक्त दान, नेत्र दान, ये जितने भी दान समाज सेवी संस्थाएं करती है ये सब पुण्य का खाता बनता है। जिस पुण्य के खाते से उनको सुख मिलता है, क्यों नहीं सुख मिलता है? अगर कोई धन दान करता है तो उसका पुण्य क्या बनेगा कि वो अगले जन्म में धनवान के घर में पैदा होगा। जन्म लिया करोड़पति पिता के पास और पैदा होते ही पिता ने उसके नाम पर 1 लाख रुपया बैंक में जमा कर दिया। अब जन्म लिया और लखपति बन गया, क्या कर्म किए उसने? उस जन्म में तो कोई कर्म नहीं किए, पर पूर्व जन्म में दान पुण्य जरूर किया होगा। तो वो दान जो उसने किया वो पुण्य बनकर के उसके साथ गया और धनवान के घर में जन्म लिया। ये कर्म की गति है। एक कहानी सुनाते हैं कि एक व्यक्ति था, 70-80 साल का बूढ़ा था। तो किसी ने उनसे पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं? उसने कहा एक ही बच्चा, जबकि 4 बच्चे थे। तो भी उसने कहा मेरा एक ही बेटा है। तो कहा अच्छा एक ही बेटा है। फिर कहा अच्छा आपकी आयु कितनी है? तो उसने कहा मेरी आयु 20 साल, जबकि वो तो 80 साल का था। तो पूछने वाला सोचता है कि ये तो झूठ बोल रहा है। फिर कहा कि अच्छा आपकी संपत्ति कितनी है, क्योंकि चारों बेटे बड़े बड़े बिजनेसमैन थे और वो भी अच्छे बड़े मकान में रहता था, सब बहुत अच्छा था। तो कहा कि मेरी संपत्ति होगी कुछ लाख, जबकि करोड़ों की संपत्ति होगी, लाख की तो बात ही नहीं। तो उसने कहा आप झूठ बोल रहे हैं, सच सच बताएं, आप कुछ छिपा रहे हैं। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि देखो मैं छिपा नहीं रहा हूं, सत्यता यही है कि मेरा एक ही बेटा है। क्यों? जो भले 4 बेटे लेकिन 3 बेटों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो कभी न मेरे पास आते हैं, न अपना हिसाब बताते हैं, न कुछ देते हैं, न कुछ मांगते हैं, न कोई कनेक्शन है, न कभी फोन करते हैं। इसीलिए मैं तो यही समझता हूं कि मेरा हिसाब किताब उनके साथ चुकतू हो गया, इसलिए मैं क्यों कहूं ये बेटा है। बेटा यानी कुछ तो हिसाब किताब हो ना, कोई लेना देना हो। जब है ही नहीं, केवल एक के साथ ही है, तो मैं तो यही कहूंगा कि मेरा जो बेटा है वो एक ही है, क्योंकि उसके साथ ही हिसाब किताब है। तो कहा अच्छा फिर आपकी आयु? तो कहा भले शरीर की आयु 80 साल है, लेकिन 60 साल तक तो हमने खूब खाया पिया मौज किया, सब पाप कर्म किए, सब कुछ, दुनिया का सबसे बुरा काम भी सब कुछ किया, लेकिन पिछले 20 साल से मेरा जीवन बदल गया है, सब बच्चों को दे दिया और मैं तो समझता हूँ मेरा सच्चा जीवन केवल 20 साल है। वो दान जो किया है उतनी संपत्ति की जो पुण्य बना वो ही मेरे साथ चलेगा। तो कितनी मेरी संपत्ति हुई? इतने लाख जो मैंने इस दान किए। अब वो सच बोला या झूठ? सच, परंतु दिखाई तो देता है कि ये झूठ बोल रहा है। तो इसीलिए सत्य और झूठ को भी किस रूप से समझना होता है, आध्यात्मिकता की दृष्टि से। तो पुण्य कर्म अर्थात ये दान जरूर करें, पर पात्र योग्य हो, साथ साथ अभिमान न आए कि मैंने किया। इसीलिए कहा कर्मणे वाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचनम्। कर्म पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है, फल उन पर छोड़ दो। कई कहते बहन जी आप बहुत अच्छा भाषण किया, अब हम आपको 100 रुपया देते हैं। हम कहते आपके 100 रुपये हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। ये ज्ञान धन ऐसा है जिसका मूल्य आप 100 रुपये से करेंगे क्या? करेंगे, कर सकते हैं 100 रुपये से मूल्य। एक भाषण का 100 रुपया एक एक देवे इसलिए हम भाषण करते हैं। ये तो परमात्मा के ज्ञान रत्न है। इन ज्ञान रत्नों का मूल्य 100 रुपए से थोड़ी होता है, ये तो अनमोल रत्न है। इन अनमोल रत्नों को हम किसी से भी भेंट नहीं कर सकते। कई हमसे पूछते हैं, बहन जी आप लोग जो यहाँ सेवा करते हैं, आप लोगों को तनख्वाह कितनी मिलती है? हम लोगों से पूछते हैं तनख्वाह कितनी मिलती है, हम कहते हैं तनख्वाह तो इतनी मिलती है, इतनी मिलती है जो मानव देवता बन जाता है, हम लक्ष्मी का स्वरूप बन जाएंगे। इनसे और तनख्वाह चाहिए क्या? हाँ चाहिए क्या बताइए, और क्या चाहिए? नर नारायण बन जाएगा, नारी लक्ष्मी बन जाएगी। तो पुण्य कर्म जो हमने किए उनका फल एक जन्म का मिलेगा, स्थूल जो पुण्य करते हैं, दान करते हैं। पर सत्कर्म के साथ वो पुण्य होता है तो उसका फल इतना ऊंचा है जो मानव देव बन जाता है। इस संगम युग पर शिव बाबा हमें जो कर्म करना सिखाते हैं, इनका फल 1000 गुना, लाख गुना, अनगिनत गुना होकर के हमको 2 युग में मिलता रहेगा। और मानव देव के रूप में प्रकृति का चरम सुख प्राप्त करेगा, तन निरोगी, मन की शांति, धन अकीचार और संबंधों में इतना प्यार और प्रेम, ये जीवन में था जब मानव देवता था। कई कहते हैं दुनिया में तो चारों प्रकार का सुख हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कईयों को चलो तन का सुख है तो धन का सुख नहीं है, कईयों को धन का सुख है पर तन का सुख नहीं है। चलो तन का भी ठीक है, दुख धन का भी है, पर परिवार का सुख नहीं है। हम एक बार दुबई गए थे तो दुबई में मुझे कहा कि बहन जी आप, एक परिवार था, एक व्यक्ति था बहुत धनवान, उसकी होटल चलती थी, तो कहा कि आप उनसे मिलने के लिए चलिए, वो कैंसर पेशेंट है, हॉस्पिटल में एडमिट है और बहुत दुखी है, तो बहुत दुखी है, आप जरूर चलिए थोड़ा उनको ज्ञान दीजिए। तो मैं गई, बहुत ऐसे मिलते हैं, तो हम गई। बुजुर्ग था, इतना रो रहा, इतना करोड़पति, होटल चल रही है पर रो रहा है, वो कैंसर का पेशेंट हो गया। कहता है बहन जी क्या बताऊं, जब मैं इतना धनवान नहीं था ना तो ज्यादा सुखी था, तो कम से कम मेरे पत्नी मेरे बच्चे सब मेरे साथ थे, अभी मैं कैंसर से पीड़ित हूँ पर पत्नी आने को तैयार नहीं है, वो बम्बई में बैठी है, कहती है मैं तो मेरा होटल और चलता है, मैं नहीं आ सकती हूँ, बच्ची अमेरिका में बैठी है वो भी आने को तैयार नहीं, और यहाँ देखो मैं अकेला नौकरों के सहारे चल रहा हूँ और आंखों से आंसू। कहता है धन कम था तो ज्यादा सुखी था, अब इतना धन आ गया जो कोई परिवार वाले पूछने वाले भी नहीं है। यानी कहने का भाव क्या है कि वास्तव में शिव परमात्मा हमें कहते हैं कि इस कलयुगी दुनिया में जरूर है ये तन मन धन जन चारों प्रकार का सुख असंभव है, परंतु क्या कभी समय था जब चारों प्रकार का सुख मानव को था? जरूर था, और वो कब था? जब मानव देव था। और ये क्या प्रूफ है कि उनको चारों प्रकार का सुख था? प्रूफ ये है कि उनकी जो मूर्तियां हैं मंदिरों में स्थापित, इन मूर्तियों को भी चारों प्रकार का सुख है। मूर्तियों को कैसे? कोई भी खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है। कभी देखा है खंडित मूर्ति, उंगली कटी हुई या आंख टेढ़ी और उसकी पूजा होती हो, कहेंगे ये खंडित हो गई। मैं पता नहीं कहाँ गई थी, हैदराबाद में गई थी, वहाँ एक जगह मुझे ले गए, हैदराबाद दक्षिण हैदराबाद में, इतना सारी इतनी सारी मूर्तियाँ रोड पर पड़ी है। तो मैंने कहा ये रोड पर क्यों इतनी सारी मूर्तियाँ पड़ी है? बोला ये डिस्कार्डेड मूर्तियाँ हैं, ये कोई भी लेने को तैयार नहीं क्योंकि खंडित हो गई है, कुछ हाथ कटा हुआ, पैर कटा हुआ, या एक आंख नहीं, या कुछ टेढ़ा नाक, या कुछ। तो एकदम जो एक्यूरेट मूर्ति है ना वो ही पूजा के काम आती है, बाकी नहीं। तो खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, तो सोचिए जब वो चेतन में होंगे तब उनका कोई भी शरीर का अंग भंग होगा, खंडित होगा। ये चश्मा भी तो आंखें खंडित है ना, तभी तो चश्मा लगाना पड़ता है। दांत नकली अगर किसी को है तो ये भी खंडित है। कान में वो मशीन डालते हैं तो ये भी खंडित है ना। कोई भी ऑपरेशन होता है, कुछ पार्ट डालते हैं, ये भी खंडित हो गया, नेचुरल तो नहीं रहा, ओरिजिनल तो रहा नहीं। पर देवताओं का कोई भी अंग खंडित नहीं है, उनका कोई डॉक्टर नहीं होगा, कोई वैद्य नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण का कोई वैद्य होगा क्या? इतने और इतनी उनकी दीर्घ आयु होती है, 150 साल की आयु होती है, और स्व इच्छा से आत्मा देह छोड़ती है वहां। आत्मा को पता चलता अभी 150 साल की आयु हुई है, अब मैं ये पुराना चोला छोड़ रहा हूं, क्योंकि आखिर चोला तो पुराना होगा ना, ये तन भी तो चोले की तरह है। पर स्व इच्छा से आत्मा वहां शरीर छोड़ती है, इसीलिए देवताओं को अमर कहते हैं। अब देह तो त्यागते होंगे, ऐसे नहीं कि नहीं त्यागते होंगे, लेकिन अमर क्यों कहते हैं? क्योंकि स्व इच्छा से, अकाल मृत्यु नहीं होता जो कलयुगी दुनिया में होता है। इसलिए कितना दुख होता है, पिता बैठा है और बच्चा चला गया, तो ये कितनी दुख की बात है। तो इसलिए सतयुग में तन निरोगी और इतनी दीर्घ आयु होती है, मन में इतनी शांति, जो आज भी उनकी मूर्तियों का दर्शन करने लिए हम जाते हैं और एक घड़ी का दर्शन किया, हमें इतनी शांति मिलती है। तो जब चैतन्य होंगे तो कितनी शांति होंगे इनके जीवन में। धन की तो कोई कमी नहीं, श्रीनाथ द्वारे में जाइए, बालाजी जाइए, इतना धन वहां डालते रहते हैं भक्त लोग, जो मूर्तियों को इतना मिलता है। तो चेतन में तो कुबेर का खजाना होगा, लक्ष्मी स्वयं साक्षात धन की देवी है, क्या कमी होगी। और इतना उनको सम्मान मिलता है, साष्टांग नमस्कार मूर्तियों के आगे करते हैं, पर है तो वो हमारे जैसे ही, कोई दो आंखें, दो पैर, दो कान, एक नाक, एक मुख, हमारे उस अंतर तो कुछ नहीं है शरीर में। पर क्या अंतर है जो उनकी पूजा होती और हमारी नहीं? कई कई हम लोगों को कहते हैं, बहन जी आप लोग देवताओं को मानते हो? हम कहते क्यों नहीं मानते हैं, केवल मानते ही नहीं है पर उनको जानते भी हैं, और वो कैसे बने हैं वो भी हम जानते हैं, और हम उन जैसा बन रहे हैं। ये हमारा यहाँ पुरुषार्थ चल रहा है कि नर नारायण बने, नारी लक्ष्मी बने। तो किन कर्मों से ये इतने ऊंचे बने और कब वो कर्म किए? सतयुग में थे तो कब उन्होंने कर्म किए जो इतने ऊंचे बने? जरूर उसके पहले किए होंगे ना, संगम पर किए। तो इस समय सत्कर्म से इतना ऊंचा फल मिलता है जो सतयुग त्रेता दो युग तक हम खाते रहेंगे, खाते रहेंगे, खाते रहेंगे। अब कई कहते अच्छा फिर ये देवताएं कहाँ चले गए? अब कहाँ चले गए बताइए आप, कहाँ चले गए? कई समझते हैं ऊपर चले गए, वापस चले गए, पार निर्वाण चले गए। कई समझते हैं कि वो कोई स्वर्ग में चले गए। स्वर्ग या ऊपर या नरक नीचे ऐसी बात नहीं है, इस संसार चक्र को एक सीढ़ी का रूप भी देते हैं। तो जो ऊपर का भाग है वो स्वर्ग कहलाता है, स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं है। तो सत्कर्मों का फल स्वर्ग में हम पाते हैं, अर्थात सतयुग और त्रेता युग में पाते हैं। और फिर द्वापुर माना दो पुर, दो हाथ हुए, ताली बजी, आत्मा देह अभिमान के वश हुई, और पाप और पुण्य ये दो खाते द्वापुर युग से शुरू होते हैं। सतयुग में सत्कर्म भी नहीं होते तो पुण्य भी कर्म नहीं होते, तो पाप तो होता ही नहीं है। पाप कर्म का कारण ये विकार है, सतयुग त्रेता में ये विकार होते नहीं है। तो वहां के कर्म कौन से होते हैं? उन कर्मों को हम चौथा प्रकार का कर्म कहते हैं, वो है अकर्म। अकर्म का मतलब क्या होता है? कर्म होते हुए भी वो कर्म नहीं है, क्योंकि उसका फल नहीं है। जैसे सीडलेस फ्रूट्स होते हैं ना, बड़े प्यारे लगते हैं उनको, सीड अंदर बीज होता है तो कई बार बीज लग जाता है, सीडलेस है तो इतना अच्छा लगता है। तो सतयुग त्रेता में जो भी कर्म देवी देवताएं करते हैं वो कर्म होते हुए भी उनका फल आगे नहीं है, वो कर्म फल के रूप में ही है। जैसे बीज बोना एक कर्म है और फल खाना वो भी कर्म है। तो सत्युग त्रेता में हमारे कर्म फल के रूप में हम खाते जाते खाते जाते खाते जाते प्रकृति का चरम सुख प्राप्त है हमें। अब दो युग तक ये फल चलता है अकर्म के रूप में, फिर क्या होता है, अब वो फल समाप्त हुआ, दो युग तक चला, अब कई कहते हैं फिर कहाँ गए वो, तो हम कहते हैं ये फिर मनुष्य बनते हैं, सब मनुष्य बन गए, देवता से मनुष्य बन गए। तो कई पूछते हैं मनुष्य कैसे बन गए, उन्होंने कोई पाप किया जो मनुष्य बने, हम कहते हैं पाप नहीं किया, पर आगे सत्कर्म भी तो नहीं किया। तो कई कहते क्यों सत्कर्म नहीं किया उन्होंने, वो तो उनके तो कर्म अच्छे होंगे, हम कहते सत्कर्म भी तब करे जब किसी को उसकी आवश्यकता हो, आवश्यकता ही नहीं है, पुण्य कर्म की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर एक संपन्न है, कोई अज्ञानी नहीं, कोई दुखी नहीं, कोई अशांत नहीं, कोई रोगी नहीं, तो किसके आगे पुण्य करे या दान करे, सब संपन्न है। तो जो भी कर्म है वो प्राप्ति के रूप में ही कर्म है, जैसे कुएं से पानी निकालते जाओ और बारिश पड़े नहीं तो आखिर क्या होगा, वो तो कुआं सूख जाएगा। एक बार 1,00,000 रुपया बैंक में आपने जमा करा दिया और रोज आप 1,000 रुपया निकालो तो 100 दिन के बाद क्या होगा, हा? खाता खाली है ना। तो पाप कर्म किया इसीलिए द्वापर में मनुष्य बने नहीं, सत कर्म की पूंजी ये दो युग तक चली। और आत्मा क्योंकि देह के साथ साथ ही जन्म लिया फिर देह त्यागा, जन्म लिया देह त्यागा, तो उसके बाद धीरे धीरे वो स्थिति आती आत्मा खुद को भूल जाती है, और ये विकारों की प्रवेशता द्वापर युग से होती है। विकार क्या है, विकार माना विकृति, जैसे किसी मकान में दरार आती है, क्रैक्स आते हैं, तो हिंदी भाषा में क्रैक को दरार को विकार भी कहते हैं, कमजोरी है ये। और वो कमजोरी क्यों आई, क्योंकि बारिश पड़ी, धूप पड़ी, हवा पड़ी, मतलब ये प्रकृति में परिवर्तन आता है तो क्रैक्स आते हैं, नेचुरली कमजोरी आती है। तो ये विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये आत्मा शरीर के संग में रहते रहते अपने आप को देह समझने लगती है, तब आत्मा विकारों के वश हो जाती है। और जैसे ही विकारों के वश हुई उसका परिणाम क्या निकलता है, पाप कर्म करना शुरू कर देते हैं। और इसका वर्णन सभी धर्मों में है, क्रिश्चियनिटी में आप देखिए कहा कहते हैं कि गॉड ने एडम और ईव को पैराडाइज में भेजा और कहा कि आप इस पैराडाइज का पूरा सुख लो, लेकिन उनको एक बात के लिए मना किया, क्या, एक फॉरबिडन फ्रूट था, फल था, कहा कि ये फल नहीं खाना। तो फल नहीं खाना मान तो गए, पर जब बहुत सुख पा लिया तो एक दिन एक सैतन शैतान कहते आया, उनको कहा कि ये फल आप खाओ, ईश्वर का कहना मत मानो। और जैसे ही फल खाया तो क्या हुआ, दिखाते ना कि दोनों नरक में गए, श्राप मिल गया, लंबी कहानी है। तो भाव को है कि कौन सा फल खाया जो नरक में गए, वो फल था देह का अभिमान, अर्थात आत्मा खुद को भूल गई, कोई फल खाने की बात नहीं है, आत्मा खुद को भूल गई और देह अभिमान के वश हुई तो विकारों की प्रवेशता हुई। कई समझते ये विकार तो बहन जी अनादिकाल से है, भगवान ने ये दुनिया बनाई तो विकार भी तो भगवान ने ही बनाए, ये तो प्रभु की माया है, ऐसे ही बोल देते हैं। हम कहते हैं माया को भी समझो, माया प्रभु की नहीं है, प्रभु की लीला जरूर है, ये प्रभु की लीला है, ये सुख दुख का खेल है, पर माया हम किसको कहते हैं, इन विकारों को हम माया कहते हैं। कई लोग समझते हैं धन माया है, हम कहते हैं नहीं, धन माया नहीं है, धन तो देवताओं के पास भी था, तो माया थोड़े थी इनके पास। पर माया कब कहलाती है, कहलाते धन को जब, कब कहेंगे, जब उस धन के प्रति लोभ है तब वो माया है, तो लोभ माया है, धन माया नहीं है। कई कहते स्त्री माया है, कई सन्यासियों ने स्त्री को माया का रूप कह दिया, स्त्री नागिन है, सर्पणी है, नरक का द्वार है, और नारी जो है वो आग के समान है और पुरुष घी का घड़ा है। कई लोग ऐसे समझते हैं, तो आग के पास अगर घी का घड़ा आएगा तो पिघल जाएगा, तो पुरुष क्यों पिघलते हैं, क्योंकि वो आग के समान है। अब ये बिल्कुल गलत बात है। हम कहते स्त्री तो शक्ति है, स्त्री शक्ति है या सर्पणी है, क्या है? शक्ति है। आप देखेंगे भारत में देवियों की पूजा साल में दो बार होती है, और जितने भी त्योहार साल में एक ही बार आते हैं, पर नवरात्रि साल में दो बार आती है। एक नवरात्रि चैत्र मास में आती है, अभी अभी हुई, और दूसरी नवरात्रि अक्टूबर में आएगी, उसके बाद फिर दशहरा आएगा। तो इतनी शक्तियों का पूजन होता है भारत में, क्या गायन है, माँ माँ करके पुकारते हैं। तो जिस माँ ने जन्म दिया उसको सर्पणी कह दो, तो माँ यानी नारी एक शक्ति है, जिसके उत्थान से विश्व का उत्थान होता है, जिसके पतन से संसार नरक बन गया है। इसलिए भगवान ने फिर से माताओं बहनों को आगे किया है, तो सत्युग बनाने लिए शिव परमात्मा ने बहनों को आगे किया है शक्ति अवतार के रूप में। इसलिए देखो भारत में दूसरी भी एक प्रथा है, बलि चढ़ाना। अभी तो बहुत कम हो गई है, लेकिन पहले जमाने में बलि चढ़ती थी ना, जब अभी भी आसाम की तरफ, उड़ीसा की तरफ, बंगाल आदि तरफ जाइए, बहुत बलि चढ़ती है, बकरों की बलि चढ़ती है, नेपाल में तो बहुत चढ़ती है। लेकिन इसमें क्या है प्रथा कि नर बलि नारी के आगे, भैंसा मुर्गा है ना, वो क्या बोलते हैं, वे भेड़ जो है, सब मेल एनिमल्स, बकरा, फीमेल एनिमल की कभी बलि नहीं चढ़ती है, नर बलि नारी के आगे, देवी के आगे, काली के आगे या देवियों के आगे वो बलि चढ़ाते हैं। आप बताइए इसका अर्थ क्या? उसने भी कहते हैं कि वह सिर की बलि है, ये सर की बलि देते हैं, सारे शरीर की बलि नहीं देते हैं, शरीर तो पूरा फेंक देंगे, वो तो फिर महाप्रसाद समझकर बना करके खाते हैं, पता नहीं क्या, लेकिन सर जो होते हैं ना वो काट करके देवी के आगे चढ़ाते हैं। अब इसका अर्थ क्या होता है, सर की बलि माना क्या? ये माना अभिमान की बलि, अहंकार की बलि। मनुष्य अभिमान में सिर ऊपर करता ना, मैं नम्रता में सिर झुक जाता है। हैदराबाद, दक्षिण हैदराबाद में एक म्यूजियम है, सलारजंग म्यूजियम, निजाम का म्यूजियम, देखा है किसी ने? गए हैं तो देखा होगा, वहां पर नीचे जो बेसमेंट है वहां एक बहुत सुंदर मूर्ति है। उस मूर्ति की बड़ी विशेषता है, आगे पुरुष का माना आकृति है और पीछे स्त्री है, तो आगे जो पुरुष है वो उसकी उसका अभिमान दिखाया है, भले वो कहते वैलर है, उसकी शक्ति दिखाई है, तो ऐसा सिर है, और पीछे दीवार पर आईना लगा हुआ है, तो आईने में जो उस मूर्ति का जो पीछे का हिस्सा है वो दिखाई देता है, वो एक स्त्री है, तो स्त्री का चेहरा है पीछे की तरफ। तो जब ये सिर ऊपर जाएगा तो पीछे का भाग क्या होगा, वो नीचे जाएगा ऐसा, तो वो स्त्री झुकी हुई है, तो स्त्री की नम्रता और पुरुष का अभिमान, ये उस बहुत सुंदर एक ही कलाकृति में ये बना हुआ है। यानी कहने का भाव है कि भगवान ने कहा कि मैं की बलि दो, मैं तो माना अभिमान की बलि दो, जो सबसे प्रिय है उसकी बलि दो। तो मनुष्य को सबसे प्रिय अपना अभिमान है, उस अभिमान को किसी भी शर्त पर वो देने को तैयार नहीं होता, और भगवान ने वही कहा वही दो, तो वो तो देना मुश्किल लगा, तो जो बकरा है ना जिसकी भाषा है मैं उसी की बलि दे दी, ये तो भगवान ने नहीं मांगा। तो ये अर्थ का अनर्थ कर दिया है। तो नर बलि नारी के आगे माना मनुष्य अपना अभिमान भगवान को अर्पित कर दे, आत्मा बन जाए, सभी आत्माएं बन जाए, तो नारी एक शक्ति के रूप में देखे, उसका सम्मान करे, तो देखो ये संसार फिर से स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए सतयुग में लक्ष्मी पहले है, नारायण बाद में। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, सीता राम, गौरी शंकर, मतलब पहले भगवान ने बहनों को आगे किया, तब ये संसार बदलकर सतयुग बन जाता है। तो द्वापर युग से ये विकार आए, और विकार जैसे आए, काम क्रोध लोभ अहंकार, तो पाप शुरू हुआ, दुख शुरू हुआ। अब पुण्य साथ साथ शुरू हुआ, क्योंकि इतना दुख हुआ तो भगवान को पुकारना शुरू कर दिया। अब जब भगवान को पुकारना शुरू किया तो उसके लिए फिर मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए, अनेक धर्म आ गए, गुरुद्वारे चाहिए, तो ये सब बनते गए। तो जिन्होंने ये बनाए उन्होंने पुण्य का काम किया, मंदिर बनाना, गुरुद्वारा बनाना, प्याऊ बनाना, दान पुण्य करते थे। तो जो ये दान पुण्य करते थे उनका पुण्य बनता गया, पर साथ साथ पाप भी बनता गया। जितनी कमाई की पुण्य बनाकर उतना ही फिर पाप किया, माना खर्च कर दिया। अब कमाई जितनी उतना ही खर्चा, तो बैलेंस तो फिर भी जीरो हो गया। और धीरे धीरे ये स्थिति आई कलयुग के अंदर, जो पुण्य भी धीरे धीरे जीरो होता गया। भले दिखावे का पुण्य बनता है पर है नहीं, क्योंकि अभिमान के वश कर रहे हैं, पात्र भी योग्य नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो पुण्य भी जीरो बन रहा है और पाप का खाता तो बढ़ ही रहा है। तो पाप का खाता बढ़ना बिना पुण्य किए, तो धीरे धीरे कर्जा, कर्जा माना कमाई है नहीं और खर्चा ही खर्चा है, तो कर्जा चढ़ेगा, ये बोझ है। तो इस समय कलयुगी दुनिया में हम देख रहे हैं पापों का इतना बोझा सिर पर है, अब उसको खत्म करना है। ये बोझ विकारों का, पापों का, हम अपने साथ परम धाम नहीं ले जा सकेंगे। जैसे कोई परदेश में जाए और वापस उसको अपने देश में आना हो, तो कोई भी इलीगल चीज, गैर कानूनी वस्तु नहीं ले आ सकता है। कई है ना इलीगल चीजें लाते हैं, वेपन्स लाते हैं, चाकू आ गया या मना भूल से भी आ गया, हाथ में मिल गया, अपने हैंडबैग में मिल गया, तो बस पकड़ा जाता है वो। या हशीश, गांजा, चरस, धतुरा, ये सब जो नशीली चीजें हैं, वो अगर लाया और पकड़ा गया तो चीज तो जाती है, लेके नहीं जा सकते देश के अंदर। चीज भी जाएगी, जुर्माना भी भरना पड़ेगा, जेल में भी जाएगा, और साथ साथ नाम कितना बदनाम होगा, सब उंगली उठाएंगे, ये व्यक्ति है ना, अखबारों में आ जाएगा, सबको पता चल जाएगा। तो शिव परमात्मा कहते हैं बच्चे अब ये पाप का बोझा उतारो, और उसके लिए शिव बाबा ने बहुत अच्छी युक्तियां बताई है। क्योंकि जैसे पहले दिन आपको बताया कि बच्चे को खेलने भेजा, अब बच्चा खेल खेल करके इतना व्यस्त हो गया जो घर आना ही नहीं चाहता है। अब माँ उसको वापस तो ले आएगी, परंतु उस गंदी स्थिति में, मैली स्थिति में तो बिस्तर पर न सोने देगी न अंदर आने देगी, तो पहले क्या करेगी, उसको ले जाएगी बाथरूम में, है ना, बच्चे को क्या करेगी, चलो स्नान करो। अब बच्चे की इच्छा नहीं है स्नान कर, उसको तो खेलने की इच्छा है, तो रोता रहेगा, पर माँ तो यही चाहती ना कि बच्चा स्वच्छ हो जाए, बहुत खेल लिया, अब घर आना है, घर चलना है, अभी सोना है, खाना खाना है, ऐसे थोड़ी खेलता रहेगा। तो माँ भी उसको प्यार तब देवे जब बच्चा आज्ञाकारी हो, नहीं तो वो भी डांटती रहेगी, मारती रहेगी। यानी भावना तो माँ की अच्छी है कि बच्चा सुधर जाए, बच्चा कहना माने, क्योंकि उसके कल्याण के लिए सोचती है, पर पहले उसको प्यार से कहेगी बेटा चलो घर, चलो बेटा घर, चलो स्वच्छ हो जाओ, समय हो गया है, तो पहले प्यार से कहेगी। फिर प्यार से नहीं मानेगी, मानेगा तो फिर आंख दिखाएगी, थोड़ा थोड़ी डांटेगी, बेटा चलो, तो सीरियस हो जाएगी, पर तो भी नहीं चलेगा, फिर पकड़ करके हाथ से जबरदस्ती भी उसको ले जाएगी और ले जा करके उसको बाथरूम में स्नान करवाएगी। अब बच्चे की इच्छा तो नहीं है, स्वच्छ होने की भी इच्छा नहीं, खेलने की इच्छा है, बस खेलना है खेलना है। तो जबरदस्ती उसको स्वच्छ करेगी, नहलाएगी, और वो बच्चा रोता रहेगा रोता रहेगा। पर कम से कम माँ को ये तो संतोष है कि बच्चा साफ हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, भले रो रहा है, क्योंकि वो समझ नहीं रहा है कि ये मेरा मेरे कल्याण के लिए माँ कर रही है, उसका मन तो खेलने में ही है। और जैसे स्वच्छ होता जाएगा, रोते रोते स्वच्छ करेगी माँ, वो रोएगा तो आखिर क्या होता है, थक जाता है, और थक करके फिर बच्चे को नींद आती है ना, सारा दिन खेला थक गया और नींद, और स्वच्छ हुआ तो साफ हुआ तो एकदम नींद आती है, और नींद आती है तो बच्चे को सुला देना पड़ता है क्योंकि नींद आ गई, फिर न उसको प्यार दे सकती है, न उसको अच्छे कपड़े पहना सकती है, न उसको खाना खिला सकती, तो सो गया, खिलाएगी भी कैसे, उसको तो नींद आ गई, बस स्वच्छ हो गया, ये खुशी है माँ को हा? खेल करके वापस घर में आया। तो शिव बाबा भी कहते हैं बच्चे एक, मैं पहले सबसे पहले प्यार से बच्चों को कहता हूँ, शिव बाबा प्यार से क्या कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, पवित्र बनो, योगी बनो, शुद्ध बनो, विकारों को जीतो, और मुझे याद करके इन पापों को नाश करो, ये सबसे श्रेष्ठ तरीका है। परंतु अगर नहीं मानते हैं